समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वचन का हर जवान की कसम।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस अंक में मैं हूं नवीन सक्सेना, वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ। और आज आप जो ये गीत सुन रहे हैं, जो आपने आवाज सुनी, ये इसलिए थी क्योंकि आज है राष्ट्र को सदैव गौरवान्वित करने वाले वायुसेना का स्थापना दिवस। अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से मां भारती की सेवा करने वाले हमारे भारतीय वायुसेना के जवानों को हमारा सलाम। और हम तो यही कहेंगे कि छोड़कर ये धरा रहते आकाश गगन, राष्ट्र के तुम प्रहरी, देश को तुम्हें नमन।
हर माँ से खेलते हैं, मिल राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं, न रुकेंगे।
लड़ाए जा, गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा,
brave men rejoice in adversity just as brave soldiers triumph in war. Nabha sparsham deeptam, touch the skies with glory. The Indian Air Force is the air arm of the Indian Armed Forces. The primary mission is to secure Indian airspace and to conduct aerial warfare during armed conflicts. Involved in victorious wars and countless operations against the enemies of the country. Major operations include Operation Vijay, Operation Meghdoot, Operation Cactus, Operation Pumalai. The IAF's mission expands beyond engagement with hostile forces, with the IAF participating in United Nations peacekeeping missions as well. The President of India holds the rank of the Supreme Commander, and it is run under the guidance, the able guidance of the Chief of the Air Staff, an Air Chief Marshal, a four-star officer, who is responsible for the bulk of Operation Command of the Air Force. Indian Air Force was established on the 8th of October in 1932 in British India as an auxiliary air force of the Royal Air Force, and was dedicated to the air servicemen and their service, the exemplary service which they gave in World War II, becoming the Indian Air Force in 1950.
वायुसेना आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है, और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में बमरौली वायुसेना केंद्र में शानदार परेड का आयोजन किया जाएगा, और आयुध डिप्पो के पास संगम इलाके में हवाई करतब दिखाए जाएंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि होंगी। राज्य के उद्योग विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, थलसेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान और मध्य हवाई कमांड के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग एयर मार्शल आरजीके कपूर भी उपस्थित रहेंगे। वायुसेना आज अपना नया प्रतीक चिन्ह जारी करेगी। बमरौली में रस्मी परेड में स्काई पैरा जम्पर्स अपने करतब दिखाएंगे, और पहली बार महिला अग्निवीरों के बटालियन को भी परेड में शामिल किया जाएगा। हवाई प्रदर्शन में लड़ाकू जेट राफाल भी शामिल होगा। पहली बार 5 हेलीकॉप्टरों की टीम सारंग भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रही है, और वैभव इसके अलावा स्काई गंगा डिस्प्ले टीम भी एक्शन में होगी। और कार्यक्रम में MiG-21 को औपचारिक विदाई दी जाएगी, और परिवहन विमान C-295 को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। प्रयागराज जिला प्रशासन ने कहा है कि हवाई करतब संगम, अरैल घाट, झूंसी, शास्त्री ब्रिज और आसपास के इलाकों से आसानी से देखे जा सकेंगे, और अनुमान है कि हवाई करतब को 5 लाख से ज्यादा लोग देख सकेंगे।
And now, Naveen, moving on with further headlines. The Assam government will distribute 4 lakh rupees each to 1,182 former Adivasi militants in Guwahati this evening. All these former militants belong to 5 groups, namely Adivasi Cobra Military of Assam, All Adivasi National Liberation Army, Birsa Commando Force, Adivasi People's Army and Santhal Tiger Force. All of them laid down arms in July this year. Out of the total surrendered militants, maximum 453 cadres belong to Adivasi Cobra Military of Assam. Chief Minister Hemant Biswa Sarma will hand over the cheque of 4 lakh rupees to them today.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश से आतंकवाद को समूल नष्ट करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए कतई बर्दाश्त नहीं की नीति के साथ आगे बढ़ना होगा। गृहमंत्री ने कल देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को संबोधित किया और कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि वामपंथी हिंसा में कमी आने से विकास को गति मिली है। इससे पहले गृहमंत्री ने उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की।
सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SSDMA कन्फर्म द डेथ टोल फ्रॉम फ्लैश फ्लड्स इन सिक्किम विच रोज टू 30 इंक्लूडिंग 9 इन एंड आर्मी पर्सनल with 81 missing after the glacial-fed Lonak Lake in North Sikkim triggered a flash flood in Teesta River Basin on the 4th of October. A total of 1,320 houses were severely damaged. Till date, 2,563 people were rescued. Around 7,025 persons have taken shelter in 30 relief camps. Due to the flash floods in Teesta River Basin, 13 bridges washed away.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर यानी GST परिषद की 52वीं बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में GST अपीलीय ट्रिब्यूनल के अलावा बाजरा और शीरे पर GST की दरों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
In a major turn of events in the Middle East yesterday, Palestinian militant group Hamas launched a surprise large-scale attack by firing a barrage of rockets into the southern and central Israel, killing at least 150 people and injuring 1,100 others. In the first reaction to the attacks, Israeli PM Benjamin Netanyahu said, "Israel is at war," and further asserting that they will win it. In response to the deadly attacks, the Israel Defense Forces launched Operation Swords of Iron, with the Israeli Air Force launching airstrikes, hitting 17 military compounds and 4 operational command centers belonging to Hamas in the Gaza Strip, killing more than 230 people. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi has expressed solidarity with Israel and said that India's thoughts and prayers are with the innocent victims and their families. And Naveen, India has made history at the Asian Games in Hangzhou, China, surpassing the 100 medal mark for the first time ever in history. Here is a report.
At the Hangzhou Asian Games in China, Indian contingent finished its campaign by living up to the commitment of Isbar 100 Par with a record haul of 107 medals comprises of 28 gold, 38 silver, 41 bronze. This outstanding feat surpassed India's previous best of 70 medals at the Jakarta Asian Games in 2018. This is only the second time India has won more than 100 medals in any of the 3 major games, the Olympics, Commonwealth Games and Asian Games. Yesterday, on the last day of India's medal action, Indian players won a total of 12 medals and half of them being gold in sports like kabaddi, badminton, hockey and archery. Today, Indian athletes will be seen at the closing ceremony in the evening. With Sudhir, this is Payal Sharma, Sports Desk.
दो हफ्ते तक चलने वाले एशियाई खेल आज समाप्त हो रहे हैं और भारत ने इस बार कर ही दिखाया। अब की बार 100 पार, 107 मेडल। करिश्मा ही है और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हमारे खिलाड़ी रिंग में उतरेंगे, इन खेलों में उतरेंगे, तब हम इस आंकड़े को भी पार कर लेंगे। बहरहाल, अब रुक करते हैं चेन्नई का। क्रिकेट विश्व कप आज भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मैच चेन्नई के एमएचए डबरम स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले विश्व कप में कल दो मैच खेले गए। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 102 रनों से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मैच हुआ था और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप का अब तक का सर्वाधिक स्कोर बनाया। 50 ओवर खेले, 5 विकेट गिरे और 428 रन उन्होंने बोर्ड पर लगाए। लक्ष्य का पीछा किया श्रीलंका ने, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 44 ओवर और 5 गेंद ही खेल सकी और सिर्फ 326 रन ही बना सकी। एक और मैच हुआ था कल जिसमें बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया था। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
आज सवेरे में वक्त हो चला है मेट्रो समाचारों का, तो चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के खबरों के साथ हैं वैभव।
Yes, Naveen, starting this section with Chennai, where the state selection committee has withheld the round 3 results of postgraduate medical courses in Tamil Nadu after the Madras High Court directed the committee not to declare the results of MD General Medicine. On hearing the petitions on October the 5th, Justice Anita Sumanth said results would not be declared in MD alone until further orders of the court. She added that there was no restriction placed regarding the declaration of results for other courses. Moving over to Bengaluru, where the National Institute of Mental Health and Neurosciences in Bengaluru hosted Harsha at Sakalvara in its South Campus in Sakalvara yesterday. A symposium was organized on residential rehabilitation methods. Topics such as merits of hospital treatment versus community-based residential rehabilitation facilities, the role of multidisciplinary mental health teams and innovative strategies for involving the public in rehabilitation efforts were discussed in the symposium. It aimed at reducing the stigma associated with mental health issues and encouraged open discussions within the community. Those were the updates from the metro section. With me, Naveen, what's going on in Delhi, Mumbai and Kolkata?
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार लाने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत सरकार ने अगले एक महीने के लिए दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में अगले महीने की 7 तारीख तक एंटी डस्ट अभियान चलाया जाएगा। गोपाल राय ने यह भी कहा कि राजधानी में धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 82 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें, 530 वाटर स्प्रिंकलर्स और 258 मोबाइल एंटी स्मॉग गन की तैनाती की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सरिता विहार इलाके से आतंकी सरगना अर्श डल्ला सुखा दुनेका गिरोह के एक सदस्य हरजीत सिंह उर्फ डैरी हैरी मॉट को गिरफ्तार कर लिया है। हरजीत सिंह की हत्या के 4 मामलों में तलाश थी और इसी गिरोह के एक अन्य सदस्य हैरी राजपुरा को 1 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस को कल एक और कामयाबी मिली। दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत कल नजफगढ़ के मालिकपुर गांव में आयोजित जैविक किसान मिलन समारोह में शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने किसानों द्वारा अपने जैविक उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और उनके साथ बातचीत की। रुख करते हैं मुंबई का, तो मुंबई में मॉनसून की बात। मौसम विभाग ने मुंबई से मॉनसून के लौट जाने की पुष्टि की है। पिछले 3 दिनों में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पुणे और नागपुर सहित महाराष्ट्र के 45% इलाकों में मानसून की वापसी हो गई है। इस वर्ष मानसून ने राज्य में देर से दस्तक दी थी, जिसमें जल भंडार कम होने लगा था। कोलकाता के रुख बात करें तो कोलकाता में दुर्गा पूजा के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना में कई फर्जी लाभार्थियों को शामिल किया गया है। पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी राज्य के वंचित वर्ग के साथ प्रदर्शन करेगी। कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री सुविंदु अधिकारी ने ये बात कही। आज सवेरे में अब वक्त हो चला है आज के मौसम का हाल जानने का, तो बात सबसे पहले दिल्ली की। दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 34 डिग्री के आसपास तापमान रह सकता है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री, अधिकतम 33 डिग्री। कोलकाता की बात करें तो वहां भी आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री के आसपास रहेगा।
Chennai is expected to have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and the maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 21 and the maximum will be around 30. Whereas Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The minimum temperature was 23. And it will hover between 23 and 31 degrees Celsius.
और अब बातें इतिहास की। वैभव हर दिन अपने आप में खास होता है, हर दिन अपने आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी घटना से जुड़ा होता है और उसे हम याद इसलिए करते हैं ताकि हम इतिहास से सीख ले सकें, वर्तमान को सुधार सकें और भविष्य में वो सब ना करें जो इतिहास में घटित हुआ, जो कि अवांछनीय था। 8 अक्टूबर की तारीख धनपत राय श्रीवास्तव की पुण्यतिथि के तौर पर दर्ज है। कुछ लोगों को यह नाम कुछ अनजाना सा लगता है, लेकिन अगर कहें कि 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद का निधन हुआ तो कलम के जादूगर को हर कोई पल में पहचान लेगा। हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में शुमार थे मुंशी प्रेमचंद। बाद में बात करेंगे और खुलकर इन पर, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज ही के दिन 1919 में गांधी जी की यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत हुई थी।
1912 द फर्स्ट बाल्कन वॉर बिगैन विद मोंटेनेग्रो डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर।
1952 आज ही का दिन, हैरो में 3 रेलगाड़ियां टकराने से कम 85 लोगों की मौत हो गई थी और इसे ब्रिटेन में शांतिकाल की सबसे भीषण रेल दुर्घटना माना जाता है।
1921 इंडियन नेशनलिस्ट्स कॉल्ड फॉर जनरल स्ट्राइक ऑन प्रिंस ऑफ वेल्स अराइवल इन देन बॉम्बे नाउ मुंबई।
1957 आज ही का दिन, उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में विंडस्केल परमाणु संस्थान में भीषण आग लगने से 16 घंटे में 10 टन रेडियोथर्मी ईंधन पिघल गया था।
As we have already told you, 1932, this was the day when the Indian Air Force was officially established, being the date of its formal constitution as India's first Air Force.
2001 में वो आज ही का दिन था जब इटली में 30 साल के सबसे पुराने असैनिक हादसे में मिलान के लिनाते हवाई अड्डे पर एक वाहन उड़ान भरने को तैयार विमान से टकराया और इसमें विस्फोट हो गया और 118 लोगों की मौत हो गई।
एंड इन 2001 ओनली यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी।
और अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो जुड़े हुए हैं आज के दिन से।
एंड एज नवीन वाज राइटली सेइंग दैट यस, व्हेन वी टेक द नेम धनपत राय श्रीवास्तव, हार्डली एनीवन वुड रिकॉग्नाइज द ग्रेट मैन एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू हिंदुस्तानी लिटरेचर, बट व्हेन वी से मुंशी प्रेमचंद, आई गेस एवरी वन ऑफ अस वुड लव टू हियर व्हाट द स्टोरी वाज। ही बिगैन राइटिंग अंडर द पेन नेम ऑफ नवाब राय बट सबसिक्वेंटली स्विच्ड टू प्रेमचंद। He was an Indian writer famous for the modern Hindustani literature. He was a pioneer of Hindi and Urdu social fiction who first published his 5 short stories in 1907 in a book called Soze Vatan, that is translated in English to The Voice of the Nation.
मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं प्रमुख थी, किसी को भी अलग से संबोधित नहीं किया जा सकता और उन्होंने हर तरह की अनेकों रचनाएं लिखी जो बचपन में हम हिंदी से पढ़ते आए हैं। ठीक ऐसे ही कई उपन्यास, नाटक, कविताएं लिखी, हिंदी साहित्य में दिए गए हैं उनके गोदान, गबन, कफन, बहुत सी रचनाएं हैं। मानसरोवर उनकी कहानियों के एक संकलन है जिसे पढ़ना चाहिए और प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू के महानतम लेखों में शुमार किया जाता है। उनकी रचनाओं को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास में एक नई परंपरा शुरू की थी जिसने आने वाली पीढ़ियों के साहित्यकारों को मार्गदर्शन दिया। और आप उनकी कहानियां पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि वो कहानियां शायद आज के ही परिदृश्य को रखकर लिखी गई थी। बहुत कुछ है उसमें आज में, और प्रेमचंद की हर रचना बहुमूल्य है जो अपने समय की सच्चाई को बयां करती है और खासियत यह कि आज भी प्रासंगिक है। एक कहानी तो कम से कम जरूर पढ़िएगा, ईद कहा.
Absolutely, and I would suggest the one story that everyone should listen to. And now with the vogue of women empowerment going on, this man, Dhanpat Raj Srivastava, as everyone knows him by his pen name Munshi Premchand, wrote a story about progressive women and how we as men should respect those progressive women. I would suggest, just like Naveendra suggested Eidgah, I would suggest to all of you to read the story Miss Padma.
Aaj hi punya tithi hai. भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार केदारनाथ साहू की. वो सरायकेला शैली में छऊ नृत्य के कलाकार थे और सरायकेला छऊ के अग्रणी नृतक केदारनाथ साहू को 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और छऊ नृत्य के लिए ही पद्म सम्मान से पाने वाले वो दूसरे शख्स थे. अपने करियर की शुरुआत में विजय प्रताप सिंह देव के साथ नेतृत्व में उन्होंने पूर्वी यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण और पूर्व एशिया में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया था.
एंड विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू एडवर्ड थियोडोर रायली, ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम टेरी रायली, एन अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ द R&B हिप हॉप फ्यूजन जॉनर न्यू जैक स्विंग. ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ innumerable hit tracks which you've heard, including tracks with Michael Jackson, Bobby Brown, Heavy D and the Boys, Keith Sweat, High Five and the Jackson 5, among others. Here's a track with a lovely line: face the problems that we see, then maybe somehow we can work it out. Here's a track by Michael Jackson, produced by Teddy Riley, called Jam.
आज मां भारती के वीर सपूत लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भी पुण्यतिथि है. जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति के नारे पर पूरा देश उमड़ पड़ा था और उन्हें समाज सेवा के लिए लोकनायक पार्टी की उपाधि दी थी. लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सारण जिला के सिताब दियारा में हुआ था. उन्होंने 1919 में ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर कॉलेज छोड़ दिया था. जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी के साथ कई आंदोलनों में शामिल हुए. जयप्रकाश नारायण ने बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और कहा था, संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है. उस दौरान गांधी मैदान में जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रभाव को नई दिशा में मोड़ दो, इसका नारा गूंजा था और इसी नारे से जयप्रकाश नारायण को विश्व में पहचान भी मिली थी. 1989 में आज ही के दिन 8 अक्टूबर को उनका निधन हो गया था. बाद में 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया.
Known as one of the greatest and the best actors to be around, Matthew Damon, or as he's known more popularly, Matt Damon, is celebrating his birthday today. An actor, producer and screenwriter, he gained prominence when he, along with his friend and actor Ben Affleck, wrote and starred in the cult movie Good Will Hunting in 1997, winning them an Academy Award and a Golden Globe for Best Screenplay. After that, it was a trail of hit movies and great performances with Ripley, the Jason Bourne series, Ocean's Trilogy, Syriana, The Departed, The Informant, Invictus, True Grit, Contagion, Ford vs. Ferrari, Stillwater, The Last Duel, Air, Oppenheimer, and of course, the movie which won him the Golden Globe, The Martian, in 2015. Wishing Matt Damon a very happy birthday and that he keeps continuing the great work that he's doing. Also wishing a very happy birthday to Peter Jean Hernandez. I'm sure you must not be knowing that name, but when I'll say Bruno Mars, I guess everyone will know what we're talking about. Wishing Bruno Mars a very happy birthday, the American singer, songwriter and record producer. Here's one of his hit numbers called Just the Way You Are. आज अपने समय के प्रसिद्ध वकील और न्यायाधीश बदरुद्दीन तैयब जी की भी जयंती है। धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना करते थे वो और अपनी निष्पक्षता के लिए उनकी बड़ी ख्याति थी। जब उनकी नियुक्ति मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर हुई तो बाल गंगाधर तिलक पर सरकार द्वारा चलाए गए राजद्रोह के मुकदमे में तिलक को जमानत पर छुड़वाने का साहसिक कार्य तैयब जी ने ही किया था।
Also wishing a very happy birthday to Rabin Muguruza Blanco, an upcoming and young tennis player from Spanish-Venezuelan inactive professional tennis player who won the Wimbledon and the Australian Open once each and of course the 2021 WTA Finals.
आज गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार की भी जयंती है। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर वो फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और राजकुमार मुंबई में जिस थाने में काम करते थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना होता था और एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। राजकुमार से बातचीत के अंदाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का उन्हें ऑफर दिया।
तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार आखिरी पल है।
स्टारिंग इन ओवर 70 हिंदी फिल्म्स एंड of course, the Oscar-nominated 1957 film Mother India. He made his acting debut in 1952 film Rangili and appeared in films like Abshar, Ghamand and Laakho Mein Ek. But it was as Prince Naushazad in Sohrab Modi's Naushirwan-e-Adil in 1957 that he became famous. 1957, of course, he achieved prominence with his work alongside Nargis Ji in Mother India. He worked alongside Shammi Kapoor and Ujala in 1959 and then came Begum alongside the great Dilip Kumar in 1959.
छब्बीस साल की उम्र में राजकुमार की पहली फिल्म थी रंगीली, रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में उन्होंने काम किया था। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वो स्क्रीन पर ही नहीं रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे और जानकारों का कहना है कि तो उनके बारे में विमर्श था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते थे तो वो कैमरे के सामने ही बदल देते थे। बहुत ही खूबसूरत गाना है, सुनते हैं।
हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं।
आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही। अब मैं, नवीन और वैभव आपको छोड़ने जा रहे हैं एक खूबसूरत विचार के साथ कि आप जैसा सोचते हैं ना वैसा ही बनते चले जाती हैं।
What you think, so you become. And stay tuned for coming up next is Samachar Prabhata, Hindi News Bulletin, followed by the morning news in English at 8:15 AM. Thank you so much for tuning in. Have a lovely day, you all. Namaskar.